अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुश्चैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरस्मिते गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै सदा कृष्णाय कृष्ण भक्ताय सदभक्ताय भक्त्या विहीना पराधलक्ष्मे कृताश्च कामादि तरंगमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वन्दे चरणां तवैवास्मि तवैवास्मि न जिवामि त्वया विना इति क्रेन्दादेकं यं प्राव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायुनो विरहकासरयाजि पुत्रेति तन्मयतया सर्वो बेटी वहां पर प्रवचन कर रही थी। कहां पर? हरिनगर में। लोग बड़े खुश हैं प्रवचन सुनकर के। अभी गए थे। मैं ऐसा चाहता हूं कि हमारे जितने बेटे बेटियां हैं ऐसा योग्य बने, आदर्श बने और महाप्रभु का संदेश, हमारे रूप सनातन का संदेश, कृष्ण का संदेश सर्वत्र विचार सब लोगों को सुनाए। जब तक खुद आदमी आदर्श नहीं होगा दूसरों को सुनाने से कुछ भी लाभ नहीं होगा, क्योंकि पहले आदर्शवान चरित्रवान भजन पारायण होकर के दूसरों को सुनाए। यही हमारी गुरु परंपरा ब्रह्मा जी से अभी तक चली आ रही है। इसको यदि ये परंपरा धारा नष्ट हो जाएगी तो संसार नष्ट हो जाएगा। अभी साधु संत लोग हैं, भजन करने वाले कुछ हैं, इसलिए पृथ्वी बच रही है, नहीं तो पृथ्वी रसातल को चली जाती। इसलिए आप लोग स्वयं भगवान का नाम कीजिए, शुद्ध रूप में भगवान की भक्ति कीजिए, कृष्ण की भक्ति कीजिए, सुख रहिए और दूसरों को सुखी बनाइए। अभी हम परसों विदेश में चले जाएंगे, प्रसंग एक दो दिन में बनता नहीं, कहीं से उठा करके लाना पड़ता है आध घंटे के लिए, कहीं एक जगह रह करके अंततः 7 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन आदमी रहे। जैसे अभी मथुरा में था करीब करीब 20-25 दिन था, बड़ा अच्छा प्रसंग चल रहा था। उसमें लौकिक शिक्षाओं से लेकर के परमार्थ की सब शिक्षाएं थी, जिसमें आदमी सुखी रह सकता है, उसको पालन करने की शक्ति आती है। तो भी आज यहां हूं तो थोड़ा सा कोई प्रसंग सुनाऊं जिसे आप लोगों का भी कल्याण हो, मेरा भी कल्याण हो, इसको ग्रहण करने की ललता से इसे सुने, जिसको हम ग्रहण करेंगे और सुखी हो सकेंगे। नहीं आ रहा है सुनने में? सुनाई नहीं पड़ रहा, तो इसको थोड़ा सा दूर रखा। फोन को घर में दे दीजिए, बीच में पीछे दे दीजिए।
एक समय की बात है, एक समय की बात है
कि नारद जी घूमते घामते द्वारका में उपस्थित हुए। उस समय में कृष्ण के पिता वसुदेव जी बहुत बड़ा भारी यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में हजारों ऋत्विक ऋषि महर्षि सब लोग आए हुए थे, गृहस्थ लोग भी उसमें थे और स्वाहा स्वाहा की ध्वनि से आकाश गूंज रहा था। हजारों मन घी और सामग्री मन की वहां पर रखी गई थी। इतने में आकाश से कोई तेज पुंजन उतरा। लोगों ने देखा जी ये क्या सूर्य दूसरा आ रहा है। धीरे धीरे देखा जैसे अरे वो तो नारद जी हैं, बिना बजाते हुए वहां पर उसमें उतरे। वसुदेव जी ने कहा यज्ञ बंद करो, यज्ञ का फल ही आ गया तो फिर यज्ञ की जरूरत क्या, इसलिए यज्ञ करने की कोई जरूरत नहीं। जो लोग हाड़ मांस चाम में मैं की बुद्धि रखते हैं और मेरे की बुद्धि रखते हैं, जल में तीर्थ की बुद्धि रखते हैं और मट्टी सोना तांबा पीतल लकड़ी से बनी हुई मूर्तियों में भगवान की बुद्धि रखते हैं, ये सब करते हैं, किंतु भगवान की जो जन निज जन है उनमें अपनत्व नहीं रखते, उनकी सेवा की भावना नहीं करते, वो क्या है, वो मैं खर है गद है। श्लोक याद है, जसा प्रबुद्धि कुनपे त्रिधातु के स्वधि कलत्राधीश भौम इज्यधि। ये सब बड़े बड़े अच्छे श्लोक हैं। ऋषि लोग सुन करके जिसे ये कृष्ण क्या कह रहे हैं घबरा गए, ये कृष्ण कह रहे हैं ये हमारों के समझ में नहीं आता है, तो तीर्थ में नहीं जाएं और ठाकुर जी की जो सेवा करते हैं द्वारकाधीश और राम कृष्ण की इधर उधर में मूर्तियां जो बनती हैं शैली दारूमयी काष्ठमयी इत्यादि जो बनती हैं उनकी पूजा न करें और माता पिता की सेवा नहीं करें और ये शरीर को हम नहीं खिलाएं पिलाएं ऐसे ही मर जाएं, इनकी समझ में नहीं आती। जनेशु, यदि जनेशु माने क्या, साधारण लोगों के जिसके हृदय में भगवान है, किंतु विशेष अर्थ होगा कृष्ण जनेशु, कृष्ण के जो जन है अपने प्रिय जन है, जो बहुत उच्च कोटि के जो भक्त हैं, कौन से कृष्ण के कौन जन है, निजन, निजन बहुत हैं, हनुमान भी निजन है, किंतु यदि हनुमान वहां रहे और यदि वहां पर अर्जुन जी आ जाएं, तो क्या करेंगे, कजे हनुमान जरा हट जाओ फट फट हो इधर और उनको अपने पलंग पर बैठा लें, और यदि ब्रज का सुदाम मधुमंगल और ये आया तो ये इनको क्या करेंगे, उनके तरफ देखेंगे भी नहीं, बस लेकर के चिपक जाएंगे। और यदि कोई गोपी आ गई तो क्या करेंगे, तो जल्दी से चला जाता, और श्रीमती जी आ जाए तो अभी उनके संबंध में कीर्तन सुना ना, ये प्रेम की बात है, साधारण लोग नहीं समझेंगे इस भाषा जो इन्होंने क्या गाया, बहुत उसे प्रेम की बात। तनिज जनेशु कृष्ण जनेशु, जो कृष्ण के जो जन हैं और उनमें ममत्व की भावना नहीं हुई, जल में तीर्थ की बुद्धि हुई, माता पिता हमारे हैं किंतु भक्तों में नहीं ऐसी बुद्धि हुई, तो वो गोखर चौपायों में गधा है, बुद्धि ले अभी से अधिक कोई गाली शास्त्रकार नहीं दे सकते, व्यास नहीं दे सकते, सुखदेव गोस्वामी जी नहीं दे सकते, इतने ही से समझो। तब फिर जब उन्होंने फूल करके बैठलाया तब ऋषि लोग समझे, एक आदमी अर्चन करता है ठाकुर जी का और जो भगवान के निजजन हैं, कैसे जन, संसार से परम विरक्त है या संसार में रहते हुए भी विरक्त हैं, पत्तन में रहते हैं,
संतों के प्रति बहुत आदर है, अपनत्व का भाव, दिन रात सेवा में लगे रहते, चिंतन में लगे रहते, संसार कहाँ जा रहा है पता नहीं। यदि उनके चरणों में सर्वस्व अर्पण यदि कोई कर दे, बस मिनट नहीं लगेगा संसार से पार हो जाएगा, और लाख जन्म तक अर्चन करता रहे और जाकर के, यहाँ नहीं है तो नेपाल में भी जाकर के, और कहाँ अमरनाथ में भी जाकर के डुबकी लगाए, कुछ कहीं जाने। सबसे बड़ी गंगा है भक्तों की वाणी, उनकी हरि कथा। इसलिए उन्होंने कहा ये यज्ञ बंद कर दो, यज्ञ का फल आ गया, ये भगवान के निजी जन है। नाथ जी को बैठाया, उनका चरण धोया, पखारा, पंच के समय वसुदेव जी ने लिया और अपने परिवार को भी सबको दिया। परिवार में कृष्ण भी हैं, रुक्मणी सत्यभामा इत्यादि सब परिवार हैं, देवकी इत्यादि हैं, सबको दिया। किसका? नर जी का चरण में। कृष्ण ने भी बड़े आराम आनंद के साथ उनका चरण में दिया, कृष्ण भी इसको ग्रहण करते हैं। यज्ञ बंद हो गया और नर जी से पूछा कि हमारा कल्याण कैसे होगा, आप हमको कुछ बताइए। उन्होंने कहा अच्छा तुम अपना कल्याण चाहते हो। मन में मैं सोच रहे हैं और कितने सौभाग्यवान ये वसुदेव जी जिसके घर में पुत्र के रूप में कृष्ण पधारे हैं और ये कहते हैं जी हमारा कल्याण कैसे हो। नंद बाबा भी ऐसे यदि नारद जी पहुंच जाएंगे तो ऐसे ही करें, कृष्ण भी के पास पहुंच जाए तो कृष्ण भी शायद ऐसा ही प्रश्न करेंगे, अपने लिए नहीं संसार के लोगों के। उन्होंने पूछा तब वो कहने लगे जी देखो एक समय की बात है, परम तत्वज्ञ संसार से परम विरक्त और संसार में ही रहने वाले महाराज जनक नेमी उनके राजभवन में कभी हबी प्रबुद्ध पलायनी इत्यादि नौ जोगेंद्र है जिनकी जाति पाति कुछ नहीं, ब्रह्म तत्व ज्ञानी है, समर्पित आत्मा है, भगवान के निजी जन है, आए और नमी महाराज जी ने इतने तत्वज्ञ होने पर भी कभी हबी इत्यादि जो थे अंतरिक्ष इत्यादि उनके पैर पखारे, उनको राज सिंहासन पर बैठाया और उनसे वही प्रश्न किया ये हमारा कैसे कल्याण होगा। और वही बातें वसुदेव जी को सारी सभा के अंतर्गत में ये बतलाने लगे, कह रहे हैं जब उन्होंने पूछा प्रश्न उनका ये था, नौ ऋषि थे, नौ ऋषियों से नौ प्रश्न किए। यहां पर महाराज नेमी पूछ रहे हैं और प्रश्नों के बाद में आप भगवान की माया बड़ी अपरंपार है, बड़ी अपरंपार पार करना बड़ा भारी मुश्किल है, और विशेष करके जो अपनी इंद्रियों को वशीभूत नहीं रखे हैं और जिनको साधुओं का संग नहीं है उनके लिए तो बड़ी भारी दुष्कर है। करोड़ों जन्मों से, एक जन्म नहीं करोड़ों जन्म से हम लोग घूम रहे हैं, अब आप कृपा करके बतलाइए जो शरीर में आत्मबुद्धि रखते हैं ये मैं हूं और इसे शरीर से संबंधित वस्तुओं में रखते हैं कि ये मेरा है, ये मेरी मैया है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा घर है, मेरा ये धन है, ये मेरा संपत्ति है इत्यादि, ये मेरा बगीचा है, ये मेरी दुकान है, सब में मेरा मेरा और मैं की बुद्धि रखते हैं। ऐसी हमारी बुद्धि भी जिनकी मोटी है, इसलिए ऐसे सरल शब्दों में आप बतलाइए अन्यासी ही हम बहुत सादर से भाग रहे हैं, जब से अभी जन्म सृष्टि आरम्भ हुई तब से हम लोग घूम रहे हैं, इसको निश्चित जानेंगे, यह पहली बार मनुष्य होकर के नहीं आए, करोड़ों बार हो गए किंतु पार नहीं हुए। इसलिए ये नारद जी से पूछा, उनसे पूछा। नारद जी कह रहे हैं नवजोगेंद्र, और उसमें जो प्रबुद्ध थे, प्रकृष्ट रूप से बुद्धिमान है, एक बुद्धिमान होता है संसार में, बुद्धि चलती है, और प्रबुद्ध किसको कहते हैं? प्रकृष्ट रूप से जो कृष्ण तत्व जानते हैं, भगवत तत्व जानते हैं, माया तत्व जानते हैं, भक्ति चीज को जानते हैं, और विशेष करके प्रेम तत्व को जानते हैं। की रीति, ये तीन अक्षर को जानते हैं, या ढाई अक्षर को, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित को, वो बुद्धिमान है। की रीति, ये बड़े प्रेम से निकले हुए अक्षर हैं, किंतु उसको समझने वाले बहुत इने गिने इस संसार में आते हैं। कहते हैं उसको जो जानते हैं वो प्रबुद्ध हैं, ये उन लोगों में से एक है, इसलिए ये बतला रहे हैं। जिसकी बुद्धि मुट्ठी है हम लोगों जैसी, आप लोग समझेंगे कि हम लोगों की बुद्धि, आप लोग मत समझेंगे कि हम लोग चलाक चतुर हैं। हम लोगों की बुद्धि कैसी है? बुद्धि ऐसी है, कलकत्ते में कसाई खाना है ना? कसाई खाना है, वहां पर रोज लाखों पशु कटते हैं। एक बार कसाईयों ने 400-500 गाय बैल भैंस बूढ़े और अच्छे कटने के लिए ले गए और द्वार भर खड़ा कर दिया, और एक एक सौ को बारी में ले जा रहे हैं भीतर और काट रहे हैं। हमको बतलाने की जरूरत नहीं ये कैसे काटते हैं, बहुत क्या कहते हैं उसे, घिनौना व्यापार। जबकि 100 को ले गए तो बाकी रहे 400, तो थोड़ा सा हरा हरी घास बीच में कहीं फेंक दिया, तो जो गाय बैल भैंस है वो क्या करेंगे? अब उसके लिए लड़ते हैं परस्पर, थोड़ा सा इधर फेंक दिया उधर फेंक दिया, और वो लड़ने लगे। उनको पता नहीं है जब अभी सौवा में मेरी बारी आ जाएगी, अभी एक मिनट के अंदर में जाना है और कटे। वो लड़ने लगे, इस समय फिर उन लोगों में से 100 को लिया फरी चक्कर। उनको पता नहीं ये हमारी संख्या कम रही है और हम एक मिनट में मरने वाले, हमारी दशा ऐसी, ऐसे ही बुद्धिमान है, उसके लिए लड़ रहे हैं हरी घास के लिए। हरी घास क्या है? ये संसार के विषय है। हमारे पापे तक दादे लाखों करोड़ों आदमी चले गए, अभी हमारे सामने ही लाखों आदमी जा रहे हैं, और जो बच्चे थे वो नौजवान हो रहे हैं, नौजवान लोग बूढ़े हो रहे हैं, और बूढ़े कहाँ जा रहे हैं? जो बूढ़े नहीं वो भी जा रहे, किंतु हम क्या सोचते हैं जो हम एकदम बच रहे हैं, और हमारी सारी चीजें बन जाएगी। यह है मूर्खों की हद, गधे गधाई खर इसको कहते हैं। तो वो बतला रहे हैं कर्मण्यारम्भमानान दुखत्तै सुखाय च पश्येत पाप विपर्यासं मिथुनी चारिणाम नृणाम। आ रहा है समझ में? मोटी बुद्धि होने पर भी इसको समझने की चेष्टा करें, जिस दिन समझेंगे उसी दिन भगवान की कृपा हो जाएगी और संसार से विरक्ति होने लग जाएगी और सुखी रहने लग जाएगी। किंतु इसको पकड़ पाना बड़ा भारी कठिन है। कह रहे हैं दो एक आदमियों के हृदय में ये जाएगा और बाकी सब वो घास के लिए लड़ेंगे, यहां से जाएंगे और घास के लिए लड़ेंगे। तभी वन टू ऑल टॉप टू बटम कहे कल से करें, अभी तो ठीक है। यही बात परम सत्य है। तो कर्मण्यारम्भमानान दुखत्तै सुखाय, प्रबुद्ध जी कह रहे हैं इनसे कह रहे हैं वसुदेव इत्यादि, और उधर में महाराज नेमी से कह रहे हैं, और नारद जी कह रहे हैं यही प्रसंग उठा करके। ये परंपरा से ये कथाएं आ रही गुरु परंपरा से। हमारी इन बातों को भी कोई दूसरी जगह सुनाए ये परंपरा में आ जाएगा, आचरण करके इसको समझने की चेष्टा करें। ऊपर से मत समझिए, भीतर से समझिए। करें कर्मण्यारम्भमानान दुखत्तै सुखाय, इस जगत में स्त्री और पुरुष, केवल स्त्री पुरुष ही नहीं, सारे विश्व के लोग, बुद्धिमान लोग, अपने को जो समझने वाले हैं, राष्ट्र संघ में, हमारे भारतीय वहां पर पार्लियामेंट में, सब देशों के पार्लियामेंट और सब देशों से चुने हुए बुद्धिमान लोगों की राष्ट्र संघ एक समिति है, वहां पर भी हो रही है, ये शांति सुख कैसे मिले? हो रहा है कुछ? हमारे घर में भी संसद बैठती है, सब लोगों के घर में स्त्री पुरुष और जो है सब बैठ जाते हैं, विचार करते हैं ये क्या करना चाहिए, कैसे सुखी है, स्त्री पुरुष मिलकर के भी विचार करते हैं और सारा विश्व का ये सब लोग किस लिए करते हैं, कैसे दुख हटे और कैसे सुख मिले। किंतु माया का ऐसा रंग है, विचित्र पहेली है, 99 का फेर है कि दुख के निवृत्ति के लिए बचपन से काम करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, विवाह शादी, घर बार वाणिज्य व्यवसाय सब कुछ करते हैं और हृदय में थुक थुकी लगी रहती है, जब क्या हो जाएगा, ये नष्ट नहीं हो जाएगा। जिसको जितना है उतना ही दुख दुखी अधिक है और जिसको कुछ नहीं है उनको तो दुख दुखी लगी हुई है, क्यों? अज्ञानता से है कम किंतु है, दुख के बदले सुखी आता है, सुख के बदले दुखी मिलता है, दुख तो दूर होता नहीं और क्या होता है, दुख के लिए, दुख को दूर करने के लिए बिजनेस किया और बिजनेस को ठीक ठाक करने के लिए और किया, उसमें और पूरी लागत लगाते चले जा रहे हैं और देख रहे हैं कि अरे हाय है, ये पूरी लागत लागत तो अब डूबने वाली है, झकमक कर सबको मृत्यु का डर, किसका डर, सुख तो आया नहीं, दुख भी दूर नहीं हुआ। कहते हैं जो पुरुष माया के पार जाना चाहता है उसको विचार करना चाहिए कि कर्मों का फल कैसे विपरीत हो रहा, सुख के लिए चेष्टा कर रहे हैं दुख क्यों आ रहा, दुख को दूर करने का चेष्टा कर रहे हैं ये क्यों, बुढ़ापे को दूर करने के लिए सफेद को काला बनाने के लिए केस को लगाते हैं, काला हो जाता है, कितनी चेष्टा हम करते हैं बुढ़ापे को दूर करने के लिए, कितना दिन रोग को दूर करने के लिए, बचपन से एक छोटा सा बच्चा उसके लिए लाखों रुपया खर्च किया गया, करोड़ों रुपया खर्च किया गया, मर्ज जहां का वहीं बल्कि बढ़ता गया, किसी को कैंसर हो गया तो देखो तो करोड़ों रुपया दे करके भी उठे, धनी है, मानी है, उसकी स्त्री है, युवती है, वो भी युवक है, देखो क्या हुआ। इसलिए कहते हैं कि कर्मों का फल विपरीत क्यों हो रहा है ये सोचो तो जरा, बुद्धि है तो, दुख निवृत्ति के बदले में निवृत्ति तो ही नहीं रही और दुख बढ़ता जाता है। नित्यार्थ देन वित्तेन दुर्लभेन आत्ममृत्युना गृहापत्य आप्त पशु भी का प्रति साथ होते चले। देखो भाई जितना अधिक धन है उतने ही आरती अधिक है। सुखदेव गोस्वामी बेवकूफ नहीं थे, जो घर से नंगे निकल गए कभी कपड़ा नहीं पहना, कपड़े का भी सवाल नहीं था, भोजन का भी सवाल नहीं, कोई छोटी सी कुटी नहीं बनाई जहां पर कि ये ममत्व है, शादी नहीं की ये ममत्व है, ये मेरी स्त्री है, और घर से निकले माता पिता को भी भूल गए। क्यों भूले, जानते हैं जिसमें फंसने से दुख होगा, माया बड़ी दुस्तर है, इसलिए कहते हैं नित्यार्थ देन वित्तेन, लाख समझाओ आज के नौ युवक को धन में सुख नहीं है, अगर धन से ही शांति मिलेगी सुख। जीवन निर्वाह के लिए कुछ जरूरत है अभी इस अवस्था में, किंतु सुख और शांति के लिए धन की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र का समय मेरी बात नहीं, ऐसा मत कहिए महाराज जी का है, ये स्वयं नारद जी का है, कभी हभी इत्यादि सब लोग का है, ये मेरी बात आपकी बात नहीं, महापुरुषों की बात है। ये जो धन कैसा है, नित्यार्थ देन वित्तेन, आरती देने वाली है, दुख देने वाला है, फिर भी हम सोचते हैं कि अर्थ मिल जाए, किंतु ये अनुभूति की बात है, जिनको अर्थ था या है वो संतोष, इसमें शांति को नष्ट कर देगा। यदि आपको अभी हम 1 करोड़ रुपए दे दें, सबके सामने दे दें, तो ये बात और भी लोगों में फैलेगी कि इनके पास में आज 1 करोड़ रुपया है, तो इसका परिणाम क्या होगा? आप लेकर के घर में जाएंगे सो सकेंगे? नींद आएगी? कहां रखे इसकी चिंता आएगी। और यदि पता लग गया तो खैर नहीं, 10-20 गोली वाले आएंगे, बंदूक वाले आएंगे, आपका काम तमाम करके भी और घर वालों को भी। कमाने में भी वैसी आती, बहुत कष्ट करके कमाया जाता है, पैसा ऐसे नहीं आता है, जो पैसा कमाते हैं वो जानते हैं, खर्च हो गया तो भी, और यदि है तो रक्षा करने में। हमारे पास 35-30 लाख रुपए थे, हमने सोचा कि इसको बिजनेस में लगा दें, और उसको बिजनेस में लगाया और वो बिजनेस हो गया डाउन, फेल हो गया, वो गया। अब बतलाओ नींद आएगी? और यदि परिवार सम्मिलित है तो कहेंगे सर तुमने डुबा दिया, उधर घर में झगड़ा लड़ाई ये, और इधर में यह उधर, इधर में शांति गई, कमाने में भी रखने में भी, और अभी नहीं आ रहा है समझ में, अभी नहीं आएगा। बुद्धिमान होगा तो आएगा, नहीं बुद्धिमान होगा तो ये चीजें नहीं, वो कसाई खाने के बाहर में जैसे घासे खा रहे हैं उनके समान में उन लोगों को नहीं आएगी, और जो बुद्धिमान पुरुष होंगे उनको ये चीज आएगी, इसलिए उसके लिए प्रतिकार का उपाय करेंगे। तो कहते हैं कि धन को ही ले लो, प्रबुद्ध जी कह रहे हैं धन को ही ले लो, इससे दिन पर दिन दुखी बढ़ता है, इसके कमाने में, इसके रक्षा करने में, इसके खर्चे हो जाने पर, इस तरह से नाना प्रकार के उलझन बढ़ जाते हैं, और उसमें अपने आप को भूल जाते हैं, भगवान का भक्ति और नाम भी भूल जाता है। ऐसी चिंता आएगी जो हरि नाम करते हैं तो माला की माला धरी रह जाएगी, बस उसी की चिंता करते करते रात भर नींद नहीं आएगी, बिछौने पर पड़े रह जाएंगे, नाम भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, क्या होगा बस। वो अपने आप को भी भूल जाता है, आत्मा को भी भूल जाता है, कुछ गुरु से सुना था कि हम शरीर नहीं आत्मा। अच्छा भगवान का नाम करो, इसमें सुख और शांति, तो अपने को भी भूल जाता है, भगवान को भी भूल जाता है और सबको भूल जाता है। इसलिए हमारे ऋषि लोग थे, व्यास जी कहां रहते थे, पत्रिकाश्रम में, छोटी छोटी लाल लाल बेर होती है ना पहाड़ों जंगलों में बर्फों में, और वहीं पर बेर खा करके किसी प्रकार की लड्डू और ये सब खाने के लिए नीचे नहीं उतरते। सुखदेव गोस्वामी का भी ऐसा, जितने भी ऋषि महर्षि ऐसा है। इसी प्रकार से उस धन से पाए जाने वाले, जिस धन की ये स्थिति है, कमाने में, रखने में और नष्ट हो जाने में जो दुख देता है, उस चीज से जो बनाया जाए चीज, वो सुख देगा? नहीं समझ में आ रहा, आया? मैंने क्या कहा बतलाई?
जो चीज कमाने में भी कष्ट देती है, उसको रखने में भी कष्ट है, और उसके हाथ से चले जाने में भी कष्ट है, अगर उसके द्वारा हम कोई चीज अर्जित भी कर लेते हैं तो वो भी कष्टकारी ही हो।
कष्टकारी, ये चीज को समझो। इसे कहते हैं कि उसके द्वारा जो घर बनाया 10-20 लाख रुपया देकर के घर बनाया, मार्बल कहां कहां से संग्रह किया, वो सस्ता मार्बल नहीं, खान से जाकर के चैन करके ले आए, अच्छा, और घर ऐसा बनाया, ब्यूटीफुल बनाया, डेकोरेशन किया, कहां कहां से ये झुलने वाला वो ले आए, और कहां से ये तार गया है कहीं नहीं मालूम, एसी लगी हुई है और सब लगा हुआ है, तो घर से सुख होगा? एक आदमी को जहां प्राण धक धक कर रहे हैं, लाखों रुपये का जगह जहां पर हानि हो रही है, इस घर में आनंद मिलेगा? नहीं मिलेगा, इसी को समझ। एक आदमी रोगी है बूढ़ा और उसको हो गया कैंसर, इलाज हो रहा है, बिजली उसका लगा रहा जा रहा है और उसको कष्ट हो रहा है। अच्छा उसको इस घर में सुला दो, सारी व्यवस्था उसको कर दो, सुखी रहेगा? नहीं रह सकता। अभी हम नौजवान हैं, नया खून है, इसलिए हम इसको नहीं समझ रहे हैं। या 80 पार करेंगे तब कुछ समझेंगे, अभी तो बड़े सुखी हैं, अभी तो पुराने भोग आ रहे हैं। इसलिए कहते हैं घर, इसके द्वारा पुत्र संग्रह किया। ये कहां से आया? पैसे से आया ना? कैसे पैसे से आया? अरे विवाह किया तो पैसा लगा ना, तो स्त्री घर में ऐसे ही नहीं आ जाएगी और पति ऐसे ही नहीं आ जाएगा। और अच्छा पति चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए तो काफी रुपये चाहिए, अच्छे घर की कुली तो पैसे से। और बेटा भी इस तरह से आया पैसे से ही। स्वजन संबंधी, जब तक संबंधी और आत्मीय है जब तक ही पैसे का लेन देन है। अभी पैसा हो गया आप देने लगे तो सबसे जितने भी आए सब आपके पास में पहुंच जाए, और रुपया नहीं है आप जेल में चले जाइए, कुछ ऐसी बात हो जाए कोई नहीं झांकेगा। इसी तरह से सभी पशुधन इत्यादि बगीचे बाग जो कुछ है सब अनित्य है, नाशवान है। यदि कोई इन्हें जुटा भी ले तो क्या सुख शांति मिल जाएगी? हाँ जुटाया तो थे, दुर्योधन ने जुटाया, बेईमानी करके रावण ने भी जुटाया। सबसे जुटाया हिरण्यकश्यपु ने, इंद्र से भी बलवान, अमर शरीर जैसा उसका हो गया, किंतु सुख नहीं मिला। प्रहलाद जी को सुख मिला। तो इसलिए कहते हैं इसी प्रकार जो एवं लोकम परम विद्या नश्वरम कर्म निर्मितम सत्तुल्य ध्वंसम यथा मंडल वर्तिना। इसी प्रकार जो मनुष्य माया से पार जाना चाहता है उसको यह समझ लो आप लोग माया से पार जाना चाहते हैं इसलिए आए हैं। जैसे भी आत्म शरीर में आत्मबुद्धि है, कुछ कुछ संसार का काम कर भी रहे हैं किंतु कुछ लालसा जगी है, इस जगत में सुख नहीं है, इसलिए हमको परम शांति कैसे मिले ये चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर आए, नहीं तो नहीं आते। तो कुछ है तो आप लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि मरने के बाद में जो अच्छे कर्मों से, माता पिता की सेवा, समाज की सेवा से जो कुछ अच्छे लोग भी बन गए, तो रुपए से यज्ञ किया, रुपए से और सब काम किया, तो वो परलोक भी ऐसा समझो नश्वर है। ते तंग भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशाल। आप सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, आप समाज का आदर करते हैं। गांधी जी ने समाज के कल्याण के लिए अपना घर भी नहीं बसाया, बाहर में रहे और कितना दुख कष्ट किया, दक्षिण अफ्रीका में जाकर के नाली में बर्तन मांजे और उनके ठोकर खाए, भारतवर्ष में भी कम कष्ट नहीं किया। तो इनको वो लोग मिलेगा कुछ अच्छा, किंतु होगा क्या? वो लोग गिराना पड़ेगा उनको। इसलिए कहते हैं ये वहां भी पृथ्वी के छोटे छोटे राजाओं के समान में वहां पर भी होड़ रहती है, इंद्र से कुबेर की ठन जाएगी, बृहस्पति जी की ठन जाएगी, और इंद्र में भी काम जगेगा तो वो भी कहां चले आएंगे? गौतम की नारी अहिल्या के पास में चले आएंगे। लड़ाई झगड़ा उन लोगों में भी होता है, किंतु भगवान का जो कोई भजन करे उसी को ये बतला रहे हैं। तस्मात गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परेच निष्णातम ब्रह्मणि उपसमासः। इसलिए इनमें सुख नहीं है, तस्मात गुरुम प्रपद्येत, इसलिए भगवत तत्व को जानने वाले संसार से परम विरक्त कृष्ण तत्व माया तत्व इत्यादि सबको जानने वाले हैं, ऐसे परम तत्व जो गुरु हैं उनके पास में जाओ और कैसे हमारा कल्याण हो उनसे पूछो। जैसे नेमी महाराज जी ने नवजोगवंद से, जैसे वसुदेव जी ने, जैसे परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, जैसे रूप सनातन जी ने महाप्रभु जी से पूछा, बिना पूछे वो बतलाएंगे नहीं। सदविधि प्रणिपात है न परिपक्ष नहीं न सेवया प्रणिपात। हम आपकी बात मानूंगा, मैं कुछ नहीं जानता, करिष्ये वचनम तव, आपके वचनों को करूंगा, उनकी सेवा से उनको प्रसन्न करो और तब इसको जान। ऐसे नहीं होता, तो इसलिए कहते हैं तस्मात् गुरु। गुरु भी जानने वाला अनुभवी हो, ठगने वाला अनुभव। आज जगत में लाखों में से बिरले गुरु होंगे जो ठगना नहीं चाहते हैं, सेवक का इस जगत के लोगों का कुछ लेना नहीं चाहते, देना चाहते हैं, उनको सुख शांति देना चाहते हैं, किंतु इनके लोगों की पूछ कम है। और जो ठग हैं उनके पीछे लाखों लोग, जैसे ये हम लोग सोच रहे हैं कि वहां खेल हो रही है क्रिकेट की, और वहां पर क्या चल रहा है, सिटोरियों का चल रहा है काम। वो जिसको चाहेंगे उसको हरवा देंगे, किसको अभी ये सब चीजें आ रही, तो वैसे ही वो सिटोरियों की वहां पर भी चलती है। तो इसलिए कहते हैं साधे परिचय निष्णातम, समस्त शास्त्र पारंगत हो और भगवान की अनुभूति हो और संसार से विरक्त हो, केवल दया से वशीभूत हो, सब पर दया करना चाहते हैं, ऐसे गुरु से जाकर के अपने कल्याण पूछो, तब वो बतलाएंगे। इसलिए तो 7:30 हो जाने जा रहा, तो संक्षेप में बतलाऊं भाई, सब उपायों में सबसे श्रेष्ठ है यदि किसी को साधु संग ऐसा मिले जो संसार से ऊपर हो, भगवान का भजन करने वाले हों, लोभ लालच काम क्रोध मोह माया मन से ये दूर रहें, ऐसा कोई व्यक्ति मिले तो उसके पास में जाकर के सीखो भागवत धर्म। तो वो कहेगा जी हरिनाम करो, अर्थ पर उतना विश्वास मत रखो जितना भगवान के नाम में विश्वास रखो। भगवान बड़े दयालु हैं, सारी शक्ति कलयुग में उसमें भरती है, इसलिए नाम के प्रति सोचो जी यही राधा और कृष्ण। देवता देवियों से मन हटाओ, उनको गुरु बुद्धि रखो, उनको आदर करो, किंतु राधा कृष्ण ही एकमात्र परम उपास्य है, इस चीज को समझो। ये वेद में उपनिषद में भागवत में गीता में सर्वत्र कह रहे हैं, किंतु मूर्ख लोग समझते नहीं वो बोखर देवी। वो कहते हैं कि जो तुमको इच्छा है वही करो, जो कुछ इच्छा हो खाओ पियो और जो इच्छा हो करो, जीव ही भगवान है, न जाने क्या क्या कहते हैं। इसलिए उनकी बातों पर विश्वास न करके फिर शास्त्र गीता भागवत जैसा कहते हैं, ऐसे जो सद्गुरु हैं उनकी बात लेकर के हरिनाम करो। कैसे हरिनाम करो, कोई सद्गुरु के अनुगत्य में वृंदावन में रह करके, यदि वृंदावन में नहीं रह सकते तो क्या करो, जहां वहीं पर वृंदावन बना लो अपने मन में, अंततः तो कुछ समय के लिए करो। स्नान करने के बाद में सोचो कि वृंदावन में बैठे हैं और वहीं पर हरे कृष्ण करते हैं, इसे सर्वार्थ सिद्धि होगी, माया भी दूर हो जाएगी, सब कुछ धीरे धीरे होगा। किंतु अपना खान पान बदलो, तामसिक और राजसिक जो खाद्य है उसको दूर करो और अच्छे सात्विक वस्तु भगवान को भोग दिया हुआ। कृष्ण ने जो उपदेश दिए हैं गीता इत्यादि में, मान अपमान क्या, मान अपमान जय पराजय हानि लाभ, इनसे थोड़ा सा निष्प्रिय रहो, होने पर भी सह लो, ऐसा करके भगवान का स्मरण करो। कल युग में नाम के अतिरिक्त और कोई चीज नहीं, साधु संघ के आश्रय में रह करके और भगवान का नाम कीजिए, ये लाखों साधनों से भी सबसे ठीक। और पहले बतलाया ना, जन कृष्ण के जो जन हैं उनका भजन करने वाले हैं, उनके आश्रय में रह करके उनके अनुगत्य में रह, जैसा वो कहते हैं वैसा हरिनाम, हरिनाम से बढ़ करके कुछ नहीं। कुछ नहीं आता है तो घर में बैठ करके ही हरिनाम करो, हरे कृष्ण 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 हरे राम, और हाथ जोड़ करके बोलो जी मैं आपका हूं जैसा हूं, मैं आपकी हूं जैसे हूं, बस ये कहिए, देखिए जैसे कृष्ण दया करेंगे, साधु संग मिला देंगे, सब कुछ हो जाएगा और आपका जीवन में सुखी होगा। संसार से घबराइए मत, विपत्तियां आती हैं वो छट भी जाती है, और उसको समझिए जैसे एक तरह से तृष्णा के समान ये झूठी चीज, उसे घबराइए मत। आपका यदि कुछ लॉस भी हुआ तो क्या गया, आए से तो खाली कुछ मिला और फिर आपका चला गया तो क्या क्या, आपका कुछ बिगड़ा बना नहीं, इसलिए इस सबसे दूर रह करके इनको सहना सीखिए और भगवान का। ये सब चले जाने पर भी कुछ नहीं, हाथ का मैल था वो चला गया, कोई भी बात नहीं, उसके लिए मत घबराइए। संसार वाले भले ही घबराए, आप लोग मत घबराए, जो भगवान का भजन कर रहे हैं निश्चिंत होकर के भगवान की आराधना करेंगे, देखेंगे जैसे ये सब संकट के बादल भी छट जाएंगे, साधु वैष्णव भी मिल जाएंगे आपके संग के लिए। आज मैं आपके बुलाने से नहीं आया, आया और आप लोग पैसे देकर के भी नहीं खरीद सकते, भगवान की कुछ प्रेरणा हुई मैं आया यहाँ रहा, भगवान की प्रेरणा हो तो कहीं जा रहा हूं। तो इसी तरह से इन सब चीजों को संभाल करके अच्छी तरह से रह करके सुख दुख में बराबर रह करके भगवान का भजन करना कभी मत छोड़िए, और एक दिन छोड़ना जरूर है इसको भी याद रखिए, और इस तरह से समझ करके हरि नाम कीजिए और सब उपदेशों के भगवान को पालन करिए, सहज रूप में आपका दुख दूर हो जाए, भव सागर से पार। यदि कुछ इच्छा भी है तभी कृष्ण का ही भजन करें, आपको वो भी ध्रुव की तरह दे देंगे। और फिर उनको समझा रहा है प्राचीन काल का एक उदाहरण दे रहा है, देखो प्राचीन काल में एक राजा थे सुजग जो उनका नाम था, वो चक्रवर्ती राजा थे, यदि पृथ्वी में एक उस राजा को हरा दें तो ये सार्वभौम राजा बन जाए, इसलिए उन्होंने उस राजे पर चढ़ाई की, घोर युद्ध हुआ किंतु दुर्भाग्यवश राजा मारा गया और उसका शरीर इधर उधर कट करके गिर पड़ा, सबको शाम को जोड़ करके लाया गया राजभवन में, लेटा दिया गया, कफन चढ़ा दिया गया, सब लोग रोने लगे। उसी समय में इतने सब रोने लगे कि कोई सांत्वना देने वाला नहीं रह गया, तो जम छोटा सा बालक का रूप धारण, जम मैंने मृत्यु, छोटे से बालक का रूप धारण करके वहां आए और समझाने लगे, भाई देखो क्यों रो रहे हो, कोई बतला नहीं रहा। अंत में एक बूढ़े ने कहा, भाई तुम नहीं समझोगे, अभी बच्चे हो, जाओ खेलो। तो आप, मैं समझता हूं आप लोग नहीं समझते हैं, आप लोग बतलाइए किस लिए रो रहे हैं। तो उसने बतलाया, हम रो रहे हैं इसलिए ये मर गए, मर गए, दिल्ली गए, अयोध्या गए, मथुरा गए, लौटेंगे कब, तो मर गए ना तो गए तो लौटेंगे कब। अच्छा यही तो कहता हूं, नहीं समझता, वो वहां चला गया जो कहीं से कभी नहीं लौटेगा, हमको क्यों बेवकूफ बना रहे हैं। अरे जिसको बेटा कहा, पिता कहा, भाई कहा, ये तो यहीं पर सो रहा है, किसी को तो कहा, ये तो सो रहा है यहीं पर, उससे बातचीत क्यों नहीं करते। नहीं भाई, मैं शरीर के लिए नहीं रो रहा, हम लोग शरीर के लिए नहीं रो, तो किस लिए रो रहे। तो उसकी आत्मा इसमें जो भीतर थी वो निकल करके चली गई। ओ, इसके लिए आप शरीर के लिए नहीं रहते, नहीं। अच्छा तो उसकी आत्मा कितनी मोटी थी, कितनी लंबी थी, गोरी थी या काली थी, वो तुमसे बातचीत करता था कि नहीं। अतः हमने तो देखा नहीं, तो देखा नहीं तो उसके लिए रोने की क्या जरूरत है। तात्पर्य क्या, ये शरीर मैं नहीं हूं, इस चीज को समझो। सत्संग में इसका ज्ञान होते होते ये समझोगे ये शरीर मैं नहीं हूं, इसके भीतर आत्मा है। तो शरीर के लिए तो सब कुछ करते हैं, शरीर तो मर जाएगा, आत्मा के लिए तो कुछ जीवन में किया नहीं, तो सुखी कैसे रहेगा। ये छोटी सी बात, इसलिए गुरु कहेगा कि देखो भगवान का भजन करो, भगवान का भजन का तरीका बताएगा। सब सहज तरीका ये है, सतयुग में त्रेता में लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष यज्ञ करने से, समाधि में आने से, ध्रुव जैसा छो मानने में समाधि में भगवान का दर्शन करते, ऐसी तपस्या हम लोगों के द्वारा संभव है। इसे सहज से सहज रूप में भगवान ने अपने नाम में सारी शक्ति दे रखी, जो उनके अंदर स्वरूप में है। इस नाम का आप जानबूझ करके, समझ बूझ करके, बिना समझे बूझे भी काम यदि भगवान का नाम लेंगे तो वो कार्य करेगा। एक आग जैसा पदार्थ एक बच्चा हो, समझ बूझ करके हाथ दे या अपने आप भूल बरसता उसमें आग में अपना हाथ चला जाए, आग जलाएगी कि नहीं? जो पानी के द्वारा हम जीवन धारण करते हैं, पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, किंतु यदि समुद्र में कहीं गिर गए या गंगा के धार में, यमुना की धार में, बीच में चले गए तो मरेंगे कि नहीं डूब करके? जो हवा इतनी, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। अभी उड़ीसा में आंधी आई ना, उस आंधी में क्या हुआ, करोड़ों लोग मरे और घर बार के बिना हो गए, अभी तक बाहर नहीं। तो यदि आप ज्ञान से अज्ञान से यदि पानी में, आग में अपना हाथ डालते हैं तो वो अपना प्रभाव दिखलाती है। तो भगवान का नाम चाहे समझ बुझ करके लो, श्रद्धा से लो, अश्रद्धा से लो, जरूर कार्य करेगा, ये बात ठीक है। किंतु श्रद्धा से लिया हुआ नाम बहुत जल्दी कार्य करता है। इसलिए कलयुग में नाम के अतिरिक्त और कोई दूसरी गति नहीं है, इसलिए बतलाया हरे नाम हरे नाम हरे नाम। उल्टा नाम जपत है जगत जाना, उल्टा नाम लेने से देखो परमात्मा पहुंच गया, तो सीधा नाम लेने से क्या होगा? इसलिए कलयुग में और दूसरा कोई उपाय नहीं है। छोटी सी आयु और मंद भाग्य करते हैं, अच्छा के लिए हो जाता है बुरा, और तरह तरह के प्रॉब्लम्स हैं बचपन से ही। इसलिए नाम जैसा और कोई सहज पथ नहीं है, भगवान का नाम करें, और वो भी यदि सदगुरु पर आश्रय करके उनके अनुगत्य में करें, तो इससे जल्दी भगवान को प्रसन्न करने का और कोई तरीका नहीं है। और वह प्रेम जो हमने बतलाया गोपियों का, वह सहज साध्य हो सकता है। संक्षेप में इसके अतिरिक्त और सहज रूप में बतलाने का और कोई तरीका नहीं। कुछ लोग आपको बतलाएंगे कि तुम खुद ही ब्रह्म हो, तो यदि खुद ही ब्रह्म हो तो फिर तुम दुख किस लिए भोग कर रहा? उनकी बातों में मत आएंगे। दिल्ली में आजकल ऐसे ही बड़े बड़े वक्ता लोग छाए हुए हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं। यदि ब्रह्म रहते तो हमको अज्ञानता कैसे आएगी, नहीं आ सकती। वो लोग कहेंगे जगत झूठा है, जगत झूठा है तो तुम्हारे प्रवचन करने की क्या जरूरत है? अरे बेवकूफों, बुद्धि के पहाड़ों, प्रवचन करने किस लिए तू आ रहा है? यदि जगत झूठा है, तुम्हारा बाप झूठा है कि तेरी मैया झूठी है, कि ये सारा विश्व है झूठा है? ये जगत झूठा नहीं है, तात्कालिक सत्य है, नश्वर है। इसमें सत्य है, परम सत्य है कृष्ण और जीवात्मा है। इसलिए आप लोग इन चीजों को जान करके भगवत भजन करें, हरि नाम करें, और यदि ऐसे संत हों जो आपके प्रति दयालु हों, जो जगत की कोई भी चीज नहीं चाहते हैं, ऐसे सदगुरु का अवलंबन करके और शीघ्र ही भगवान के तरफ में बढ़ो। यही हमारा आप लोगों के सामने हमारा यही वक्तव्य है। आज से ही प्याज लहसुन धूम्रपान मांस मछली अंडे गोश्त ये छोड़िए। यदि सुखी होना चाहते हैं, सब जितने भी जगत में क्रियाएं हैं उसकी प्रतिक्रियाएं होती हैं। आप जिस चीज का मांस खा रहे हैं, मांस माने क्या, मांस खादति, जिसका मांस अभी खा रहे हैं वही व्यक्ति बनकर के आपको खाएगा, ये निश्चित समझिए। मीट, मांस का अर्थ होता है मीट। मीट माने क्या, एम ई ए टी, एम ई मी ई ए टी, जिसको हम खाते हैं वो कल खाएगा, ये समझ रखो। जिसका अंडा आप खा रहे हैं वही अंडा मनुष्य होकर के तुम्हें खाएगा या दूसरा होकर के खाएगा, ये जरूर प्रतिक्रिया होगी। प्याज खाएंगे, लहसुन खाएंगे, आपका दिमाग प्याज लहसुन से बनेगा और वैसे ही क्रूएल आपको, आप इन चीजों को समझ नहीं सकेंगे। खान पान पर बहुत कुछ व्यवहार करता है। एक आदमी कल हमसे, एक बड़े भारी बड़े उच्च कोटि के डॉक्टर से कह रहे थे, जैसे महाराज ये खान पान से क्या है, प्याज लहसुन भगवान ने बनाया तो इसको हमको खाने में हर्ज क्या है? तो मैंने कहा धतूरा भी भगवान ने बनाया, और बीच में बांधवा लें वो भी खा लो तो वो कैसे खाएं? तो इसको कैसे खाया? भगवान ने बनाया उसको भी, उसको भी। अरे विवेक भी तो भगवान ने दिया, इसलिए खान पान से हमारे हृदय का मस्तिष्क का गहरा संबंध है, भगवान का भजन का गहरा संबंध है। इसलिए खान पान शुद्ध करके भगवान को अर्पित करके उसका प्रसाद के रूप में ग्रहण करके चलो और भगवान का सहज रूप में भजन करके चलो। यद्यपि यहाँ पर लाखों करोड़ों आदमी नहीं है सुनने के लिए, तभी ये समझिए यही भजन का सार और ये समस्त उपदेशों का सार है। जो गीता भागवत नहीं मानते, रामायण नहीं मानते, उपनिषदों के अनुसार नहीं चलते हैं, उनकी बात कदापि मत सुनिए। जो ये कहेगा कि मैं ब्रह्म हूं उसकी बात भी मत सुनिए। जो कहेगा कि सबको प्रसन्न करना है, दुर्गा को भी, काली को भी, मनसा को भी, गणेश को भी, शंकर को भी, हनुमान को, सबको प्रसन्न करना है। एक साथ है सब सधे, सब साथ है सब, सबके मूल भगवान कृष्ण हैं, उनका भजन करने से सबकी प्रसन्नता हो जाए। अन्यथा अलग अलग करने से आप एक छोटे से बच्चे को भी प्रसन्न नहीं कर सकते, किसी को भी प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए कृष्ण को प्रसन्न करने की चेष्टा करें, भगवान का नाम कीजिए, सबसे सरल रूप में चलते फिरते उठते बैठते पलंग पर बिना स्नान किए स्नान किए भगवान का नाम कर सकते हैं। श्रद्धा से हो भले अश्रद्धा से ही हो, करो तो देखो उसका क्या फल होता है। अजामिल ने अपने बेटी के लिए किया, क्या हो गया? इसलिए भगवान का नाम कीजिए और सुखी रहिए, इससे सहज तरीका जीवन में सुखी होने का। गौ प्रेमानंदे नाम से संबंध नहीं, गुरुदेव कृपा हो गया है। हाँ तो दर नाम है।